मैं चंदन कुमार सामाजिक विज्ञान संकाय के बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ और आपके बीए प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आपके सिलेबस के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट है भारतीय समाज के अध्ययन के उपागम। इसकी रिकॉर्डिंग निम्न प्रकार है। भूमिका, डॉक्टर लल्लन जी गोपाल ने उचित ही लिखा है कि भारत का अतीत उसके वर्तमान में जीवित है। भारतीय समाज और संस्कृति की विभिन्न शताब्दियों का इतिहास एक ही सूत्र में गुथा है। रोम, यूनान और बेबीलोनिया की भव्य संस्कृतियां नष्ट होकर अतीत की कथा मात्र रह गई, पर इन सब के विपरीत आधुनिक भारत के थे। यही कारण है कि आज भी भारतीय सामाजिक संगठन में संयुक्त परिवार, जाति प्रथा, पंचायत, विवाह और धर्म अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। यद्यपि पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर इनके रूप या स्वरूप कुछ बदल भी गए हैं, फिर भी आधार वही हैं और वही रहेंगे भी। स्पष्ट है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था अति प्राचीन एवं गौरवपूर्ण है और वह अपने ज्ञानमय प्रकाश से पथभ्रष्ट मानवता को निरंतर राह दिखलाती आई है। आज भी भारत इस गौरव से वंचित नहीं है। विश्व के नाना देश जब आज युद्ध, प्रतियोगिता और आपसी तनाव के बीच फंसकर त्राहि त्राहि कर रहे हैं, तब भी भारत शांति और विश्व प्रेम के अभय मंत्र का पाठ उन्हें पढ़ा रहा है और उन्हें हाथ पकड़कर सही रास्ते की ओर उन्मुख करने का कार्य कर रहा है। वास्तव में इसके लिए अनेक गुणों की आवश्यकता होती है और भारतीय सामाजिक व्यवस्था में इन गुणों का अभाव नहीं प्रचुरता रही है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था की यही सबसे महान विशेषता है। इससे पूर्व कि भारतीय सामाजिक संगठन का अध्ययन किया जाए, सामाजिक संगठन का अर्थ समझ लेना आवश्यक है। हेडिंग है, सामाजिक व्यवस्था क्या है। समाज एक अखंड संगठन या व्यवस्था नहीं है, यह अनेक इकाइयों के सहयोग से बनता है। दूसरे शब्दों में, समाज के कुछ निर्णायक इकाइयां होती हैं। ये इकाइयां समाज में पाई जाने वाले समिति, संस्था, वर्ग, जाति आदि होती हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई का समाज में एक निश्चित स्थान और एक निश्चित कार्य होता है। उदाहरणार्थ, जाति प्रथा एक संयुक्त परिवार या भारतीय समाज में एक निश्चित स्थान तथा कुछ निश्चित कार्य निर्धारित है। इस निश्चित कार्य और निश्चित स्थान के आधार पर जाति प्रथा और संयुक्त परिवार किसी न किसी रूप में एक दूसरे से संबद्ध हैं। इसी प्रकार समाज की अन्य इकाइयां भी एक दूसरे से संबद्ध होती हैं और इनके फलस्वरूप उनका एक संगठित व संतुलित रूप प्रकट होता है। इसी को सामाजिक संगठन या व्यवस्था कहते हैं। और भी स्पष्ट शब्दों में, सामाजिक संगठन या व्यवस्था वह स्थिति है जिसमें कि समाज की विभिन्न इकाइयां अपने अपने कार्यों के आधार पर एक दूसरे से संबद्ध हो जाने के फलस्वरूप एक संतुलित स्थिति उत्पन्न करती हैं। श्री जोन्स ने सामाजिक व्यवस्था की परिभाषा करते हुए लिखा है, सामाजिक संगठन वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज की विभिन्न इकाइयां आपस में पूरे समाज के साथ एक अर्थपूर्ण ढंग से संबद्ध होती हैं। अगली हेडिंग है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था का अभिप्राय। हम ऊपर कह चुके हैं कि सामाजिक संगठन वह स्थिति है जिसमें कि समाज की विभिन्न इकाइयां अपनी अपनी पूर्व स्थिति पर रहते हुए समाज द्वारा निर्धारित कार्यों के आधार पर एक दूसरे से इस प्रकार संबद्ध रहती हैं कि समाज में एक संतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी संदर्भ में भारतीय सामाजिक संगठन या व्यवस्था के अभिप्राय को भी स्पष्ट किया जा सकता है। भारतीय सामाजिक संगठन का अर्थ भारतीय समाज में पाई जाने वाली उस संतुलित या व्यवस्थित स्थिति से है जो कि इस समाज के विभिन्न निर्णायक इकाइयों के अपने अपने स्थान पर रहते हुए पूर्व निश्चित कार्यों को करने के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं। इस दृष्टिकोण से भारतीय सामाजिक संगठन उस व्यवस्था की ओर संकेत करता है जिसके अंतर्गत भारतीय जीवन के स्थापित तथा मान्य उद्देश्यों और आदर्शों की प्राप्ति संभव होती है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारतीय समाज ने विभिन्न उपव्यवस्थाओं को प्रतिस्थापित किया है, जैसे वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, संयुक्त परिवार व्यवस्था, जाति व्यवस्था इत्यादि। इन उपव्यवस्थाओं में वर्ण व्यवस्था भारतीय सामाजिक संगठन की केंद्रीय धुरी है क्योंकि इसके द्वारा न केवल समाज को कुछ निश्चित वर्णों में बांटा गया है बल्कि सामाजिक व्यवस्था व कल्याण को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य कर्मों को भी निश्चित किया गया है। अतः स्पष्ट है कि वर्ण व्यवस्था समाज में सरल श्रम विभाजन की व्यवस्था करती है। आश्रम व्यवस्था द्वारा जीवन को चार स्तरों में बांटकर और प्रत्येक स्तर पर कर्तव्यों के पालन का निर्देश देकर मानव जीवन को सुनियोजित किया गया है। जाति प्रथा मनुष्य को जन्म से मृत्यु तक घेरे रहती है। संयुक्त परिवार मानव के कार्यों का नियोजन और निर्देशन करता है। विवाह मनुष्य को पूर्णता प्रदान करता है और गाँव पंचायत गाँव के सामूहिक जीवन का प्रतीक है। ये सभी भारतीय सामाजिक संगठन के आधार हैं और इन सब का सम्मिलित रूप ही भारतीय सामाजिक संगठन या व्यवस्था है। अगली हेडिंग है भारतीय समाज या सामाजिक व्यवस्था के परंपरागत आधार। पहला, वर्ण व्यवस्था। भारतीय सामाजिक संगठन या व्यवस्था की केंद्रीय धुरी वर्ण व्यवस्था है और इसलिए परंपरागत भारतीय सामाजिक संगठन या व्यवस्था को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि वर्ण व्यवस्था को न समझ लिया जाए। सामाजिक संगठन या व्यवस्था को सुचारू रूप से क्रियाशील करने के लिए यह आवश्यक है कि सामाजिक कार्यों का विभाजन उचित ढंग से हो। उचित रूप से श्रम विभाजन व्यक्ति के प्राकृतिक स्वभाव, गुण और प्रवृत्ति के आधार पर ही संभव है। अतः सामाजिक कार्यों को विभिन्न स्वभाव, गुण व प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के समूह में बांट देना ही उचित समझा गया। एक एक समूह को एक एक वर्ण माना गया और प्रत्येक समूह के सदस्यों के आधार, व्यवहार या सामाजिक कार्य व कर्तव्यों का एक निश्चित मानदंड निर्धारित कर दिया गया। यही वर्ण व्यवस्था है। श्री यास्कराचार्य ने वर्ण की उत्पत्ति के विषय में कहा है कि वर्ण शब्द की उत्पत्ति वर्ण अथवा चुनाव करने का अर्थ देने वाले ब्री धातु से हुई है, अर्थात वर्ण है वह है जिसको व्यक्ति अपने कर्म और स्वभाव के अनुसार चुनता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णित विवरण के अनुसार विश्व पुरुष के शरीर से चार अंगों से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति हुई। उस प्रभु ने मुख से ब्राह्मण, बाहों से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पदों से शूद्रों को उत्पन्न किया। मनुस्मृति, पुरुष सूक्त आदि में विभिन्न वर्णों के कर्तव्य या वर्ण धर्म का भी उल्लेख किया गया है। पुरुष सूक्त में ब्राह्मण को समाज का मस्तिष्क माना गया है। ज्ञान अर्जन और ज्ञान वितरण ब्राह्मण का एक प्रमुख कर्तव्य है। क्षत्रिय को समाज रूपी पुरुष की भुजा अर्थात शक्ति और संरक्षण का प्रतीक माना गया है, इसलिए शासन तथा सुव्यवस्था का उत्तरदायित्व क्षत्रिय पर ही है। मनुस्मृति के अनुसार वैश्य के कार्य पशुओं का पालन तथा उसकी रक्षा करना, दान, अध्ययन, यज्ञ, वाणिज्य तथा कृषि है। शूद्रों को समाज रूपी पुरुष का चरण माना गया है। मनुस्मृति के अनुसार शूद्रों का कार्य द्विज वर्णों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य की सेवा करना है। दूसरा है कर्म का सिद्धांत। भारतीय सामाजिक संगठन या व्यवस्था की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता या आधार कर्म का सिद्धांत भी है। इस सिद्धांत के अनुसार मानव जीवन का सबसे प्रमुख उद्देश्य कर्म कार्य करना है। इस सिद्धांत के अंतर्गत यह विश्वास किया जाता है कि मनुष्य को अपने भाग्य पर भरोसा रखकर अकर्मण्य नहीं हो जाना चाहिए। साथ ही मनुष्य का भाग्य भी उसके कर्मों के संदर्भ में ही निर्मित होता है। और भी स्पष्ट शब्दों में जो मनुष्य जिस प्रकार के कर्म करता है उसका भाग्य भी उसी प्रकार निर्धारित होगा। इस रूप में अच्छे कर्मों को करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। कर्म के सिद्धांत की एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति को कर्म भी फल की इच्छा के संदर्भ में नहीं करना चाहिए। मनुष्य का कर्तव्य तो कर्म करने का है, फल प्रदान करना तो ईश्वर का कार्य है। यही कर्मवाद है जिस पर संपूर्ण भारतीय समाज आधारित है। तीसरा है आश्रम व्यवस्था। भारतीयों ने अपने सामाजिक संगठन या व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति के महत्व को पूर्णतया स्वीकार किया है। यह माना गया है कि समाज में सुव्यवस्था व संगठन तब तक संभव नहीं है जब तक कि व्यक्ति के जीवन को संगठित व व्यवस्थित नहीं किया जाएगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति की जीवन व्यवस्था को नियोजित किया जाए। आश्रम व्यवस्था इसी नियोजन का एक व्यवहारिक रूप है। हिंदू दर्शन के अनुसार वही जीवन व्यक्तित्व पूर्ण व सार्थक है जिसमें बौद्धिक, व्यवहारिक तथा आध्यात्मिक प्रगति के लिए समान व संतुलित अवसर प्रदान प्राप्त होता है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आश्रम व्यवस्था को प्रतिपादित किया गया है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव जीवन को चार भागों में विभक्त किया गया है। पहले भाग में व्यक्ति को ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना पड़ता है और वह अपनी बौद्धिक प्रगति के लिए अध्ययन करके शिक्षा या ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरा स्तर गृहस्थ आश्रम है जिसमें व्यक्ति विवाह करके गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है, संतानों को जन्म देता है और यज्ञों, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूत यज्ञ तथा नृयज्ञ को संपादित करता है। जीवन के तीसरे भाग वानप्रस्थ आश्रम के स्तर पर वह सांसारिक माया मोह को त्यागने का प्रयत्न करता है। चौथा स्तर संन्यास आश्रम का है जिसमें कि व्यक्ति सन्यासी बनकर भगवान को पाने के लिए या मोक्ष की खोज में अपने को नियोजित करता है। प्रत्येक आश्रम 25 वर्ष का होता है इसलिए हिंदुओं में 100 वर्ष जीवित रहने की कामना की जाती है। हिंदू की दृष्टि में जीवन का लक्ष्य भोग नहीं, संग्रह नहीं, अपितु त्याग और परोपकार है। चौथी हेडिंग है संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली। भारतीय सामाजिक संगठन या व्यवस्था का एक अन्य आधार संयुक्त परिवार है। ऋग्वैदिक काल से ही सामाजिक जीवन की एक आधारभूत इकाई के रूप में संयुक्त परिवार को भारतवासियों ने स्वीकार कर लिया था। परंपरागत रूप में पति और पत्नी के अतिरिक्त परिवार में माता पिता, भ्राता भगनी, पुत्र पुत्री, बहू व अन्य नाते रिश्तेदार भी रहते हैं। परिवार के सभी सदस्य एक ही मकान में रहते हैं, एक ही रसोई में पका भोजन करते हैं तथा सम्मिलित संपत्ति का उपभोग सब मिलकर करते हैं। परिवार का स्वामी या कर्ता कोई वयोवृद्ध सदस्य या बहुधा पिता होता है, जो कि परिवार के अन्य सदस्यों पर नियंत्रण करता हुआ परिवार की संपत्ति की देखभाल करता है। तीज त्योहार तथा सामाजिक और धार्मिक कृत्यों में परिवार के सभी लोग सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार संयुक्त परिवार भारतीय सामाजिक संगठन की आधारभूत इकाई के रूप में भारतीय जीवन को संगठित करने में योगदान देता रहा है, यद्यपि आज अनेक कारणों से इस प्रणाली का विघटन आरंभ हो गया है। पांचवा है जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम। भारतीय सामाजिक संगठन या व्यवस्था की एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता या आधार जाति प्रथा है। कहा जाता है कि भारत की हवा तक में जाति प्रथा का प्रभाव है, और इसलिए इस प्रभाव से इस देश का कोई भी समूह या समुदाय अपने को पूर्णतः विमुक्त नहीं कर पाया है। जाति प्रथा का आदि रूप वर्ण व्यवस्था है, जिसके अनुसार समाज मोटे तौर पर चार वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटा हुआ था। प्रारंभ में इस वर्ण विभाजन का आधार कर्म और श्रम था, पर धीरे धीरे यह आधार पूर्णतया जन्म ही हो गया और साथ ही प्रत्येक जाति स्वयं अनेक उपजातियों में बट गए। फलतः आज भारतवर्ष में 3000 के लगभग जातियां और उपजातियां पाई जाती हैं। यह जाति प्रथा भारतीय समाज को विभिन्न खंडों में विभाजित करके भोजन, विवाह व सामाजिक सहवास के संबंध में अनेक या कुछ प्रतिबंधों को अपने सदस्यों पर लागू करती है, और इस प्रकार मनुष्य पर जन्म से लेकर मृत्यु तक नियंत्रण रखती है, यद्यपि आज इसके परंपरागत रूप में महान परिवर्तन हो गया है। छठवां है विवाह, मैरिज। भारतीय सामाजिक संगठन या व्यवस्था में व्यवस्था के एक प्रमुख आधार के रूप में विवाह संस्था का महत्व अत्यधिक है। मनु ने स्वीकार किया है कि जैसे सब जंतु वायु के सहारे जीवित रहते हैं, वैसे ही सब प्राणी गृहस्थ आश्रम से जीवन धारण करते हैं। जैसे सब नदी नद समुद्र में जाकर स्थिर हो जाते हैं, वैसे ही तीनों आश्रम गृहस्थ से ही स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी की सहायता से जीवित हैं। हिंदू विवाह इसी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश पाने का साधन है। हिंदू मान्यता के अनुसार विवाह का विधान ईश्वर इच्छा का फल है। कौन किसका पति या पत्नी होगा, इसका निर्धारण स्वयं भगवान करते हैं, अतः विवाह की प्रकृति सनातन है। मनुस्मृति में कहा गया है कि सृजन की इच्छा से स्वयं विराट पुरुष ने अपने को नर एवं नारी दो भागों में विभाजित किया, अतः इनका मिलन स्वाभाविक है और विवाह के द्वारा ही वह मिलन संभव होता है। साथ ही इस मिलन के बिना न तो स्त्री पूर्ण है और न ही पुरुष पूर्णतया परिपूर्णता लाभ कर सकता है। इसलिए शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि पत्नी निश्चय ही पति का आधा अंश है, अतः जब तक पुरुष पत्नी प्राप्त नहीं करता, संतान नहीं उत्पन्न करता, तब तक वह पूर्ण नहीं होता। किंतु जब वह पत्नी उपलब्ध करता है, संतान प्राप्त करता है, तो वह पूर्ण बन जाता है। वेदों का आदेश है कि स्त्री एवं पुरुष के सहयोग से वेद सम्मत नियमों का पालन किया जाना चाहिए। विवाह एक ओर काम आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है और दूसरी ओर पुत्रोत्पत्ति के द्वारा पितृऋण से ऋण कराता है। विवाह की आवश्यकता हिंदू के लिए इसलिए भी है कि कोई भी शुभ कार्य, यज्ञ तथा पूजन बिना पत्नी के पूर्ण नहीं माना जाता। सातवां है गाँव पंचायत, विलेज पंचायत। भारत गाँवों का विशाल देश है और इसमें प्रत्येक ग्रामीण समुदाय की सामाजिक व्यवस्था के तीन बड़े आधार हैं, जाति प्रथा, संयुक्त परिवार और गांव पंचायत। भारत में गांव पंचायत ग्रामीण गणतंत्र के रूप में बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है और भारतीय ग्रामीण जीवन में उसका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और गाँव ही उसकी इकाई है। प्राचीन काल में प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर हुआ करता था और ग्रामीण शासन प्रबंध, शांति और सुरक्षा की एकमात्र संस्था पंचायत ही थी। 10वीं शताब्दी के ग्रंथ शुक्र नीतिसार में ग्राम पंचायत के संगठन का विस्तृत विवरण मिलता है। उस वर्णन से यह पता चलता है कि उस समय गांव पंचायतें निर्वाचित होती थी। गांव पंचायत का संगठन आधुनिक गणतंत्र जैसा ही था। यह संगठन 5 निर्वाचित व्यक्तियों को मिलाकर हुआ करता था, इसी कारण इसे पंचायत कहा जाता था। ये लोग गांव के बड़े बूढ़े और अनुभवी व्यक्ति होते थे, इसी कारण इनके मुंह से निकला प्रत्येक शब्द कानून से भी अधिक प्रभावशाली होता था। पंच परमेश्वर की धारणा गांव पंचायत के परंपरागत स्वरूप नहीं अस्पष्ट रूप से व्यक्त होती है। इस गांव पंचायत का ग्रामीण जीवन से संबंध समस्त विषयों पर नियंत्रण तथा अधिकार होता था। दूसरे शब्दों में इसको कार्यपालिका तथा न्यायपालिका संबंधी दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त होते थे। भूमि का वितरण, उस पर कर निर्धारण और वसूली, शांति, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवा आदि कार्य पंचायत ही करते थे। सब पंच मिलकर प्रत्येक की और प्रत्येक सब की सेवा करते थे। इनको इन सेवाओं के लिए वेतन तो नहीं मिलता था, पर कर मुक्त जमीन या अन्य सुविधाएं प्राप्त होती थी। भारतीय सामाजिक व्यवस्था के प्रमुख आधार के रूप में गांव पंचायत आज भी क्रियाशील है और गांव के उन्नति और कल्याण की दिशा में नाना प्रकार के कार्यों को कर रही है। आठवीं हेडिंग है धर्म की प्रधानता, डोमिनेंस ऑफ रिलीजन। भारतीय सामाजिक संगठनों या व्यवस्थाओं की एक बहुत बड़ी विशेषता यह रही है कि उनमें जीवन के अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा न करते हुए धार्मिक जीवन की प्रधानता। वस्तुतः प्राचीन काल में भारतीय जीवन के प्रायः सभी क्षेत्रों में धर्म का प्रबल्य था और सभी पर उनकी स्पष्ट छाप देखने को मिलती है। कुछ उदाहरणों द्वारा इस बात का स्पष्टीकरण किया जा सकता है कि पंचायत के संबंध में यह कहा जा सकता है कि पंच परमेश्वर होता है, अर्थात पंच के निर्णयों में भी धर्म भाव छिपा हुआ है। हिंदू विवाह तो एक धार्मिक संस्कार माना ही जाता है और यह विश्वास किया जाता है कि विवाह में वर वधु का चुनाव भगवान के द्वारा ही होता है। जाति प्रथा का भी कुछ न कुछ धार्मिक आधार अवश्य ही ढूंढा जा सकता है। उदाहरणार्थ परंपरागत रूप में चारों वर्णों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की उत्पत्ति क्रमशः ब्रह्मा के मुख, बाहु, जांग तथा पैर से मानी जाती है। चारों आश्रमों अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास में भी देवपरायणता परिलक्षित होती रहती है। साथ ही धर्म मानने वाले सभी व्यक्ति एक नैतिक समुदाय में संयुक्त व संगठित होते हैं। इस दृष्टिकोण से धर्म का क्षेत्र विस्तृत है, समस्त संकुचित मनोभाव से परे है और संकुचितता का अभाव समाज के लिए कल्याणकारी है। इसी कारण प्रत्येक संस्था को धर्म से संबंधित रखा गया, जिससे व्यक्तिगत स्वार्थ सामूहिक स्वार्थ के सम्मुख झुका रहे। वैयक्तिक जीवन की संकुचितता के ऊपर उठकर समष्टि के साथ व्यक्ति के तादात्म्य का अनुभव होना समाज के व्यवहारिक जीवन में वास्तविक सुख और शांति का निर्माण करता है। समाज जिन व्यक्तियों से बना है उन सब में एकात्मक भाव से उत्पन्न निरतिशय प्रेम के बिना यह तदात्म नहीं हो सकता। अतः जब व्यक्ति संकुचितता को छोड़कर इस बात को पहचान लेता है कि अपने में और अन्य व्यक्तियों में अभेद रूप से वही सतत्व भरा हुआ है, तभी वह वास्तविक प्रेम करने में समर्थ होकर समाज के साथ तदात्म्य अनुभव कर सकता है और इस तदात्म्य से विशाल होकर सुखी होता है। कुछ पाश्चात्य विद्वान इसी आधार पर दोषारोपण करते हैं कि संपूर्ण भारतीय जीवन में परलोक पर इतना अधिक बल दिया गया है कि इह लोक के जीवन के प्रति उदासीनता और इसके फलस्वरूप निष्क्रियता की भावना को प्रश्न मिला है, परंतु ये आक्षेप निराधार है। डॉक्टर लल्लन जी गोपाल के शब्दों में भारतीयों ने सदैव ही परमार्थिक और व्यवहारिक का अंतर समझा है। परमार्थिक सुखों को सर्वोच्च सुख मानते हुए भी वे जानते हैं कि इहलोक के सुखों और कल्याण की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भोग के साथ त्याग का सुंदर सामंजस्य अर्थात त्यागमय भोग, यही भारतीय संस्कृति का आदर्श व प्राण है। भोग व त्याग का इतना सुंदर सम्मिश्रण संसार की और किसी अन्य सामाजिक व्यवस्था में देखने को नहीं मिलती है। नौवीं हेडिंग है साम्य और स्वतंत्रता। कुछ विद्वानों का कथन है कि भारतीय समाज के नियम और निर्देश एक पक्षीय हैं, विशेषकर स्त्रियों पर अनेक निर्योग्यताओं को लादकर उनके समस्त विकास को रोक दिया गया है। परंतु इतना वास्तव में इतना कहना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि भारतीय दृष्टिकोण से साम्य और स्वतंत्रता का अर्थ ही कुछ भिन्न है। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के शब्दों में भारतीयों की मूलभूत धारणा यह है कि सच्चरित्र व्यक्तियों के बिना समाज अच्छा नहीं हो सकता। उत्कृष्ट समाज रचना के लिए अच्छे राजनियम बनाने या व्यक्ति के अधिकारों की व्यवस्था करने की अपेक्षा उदात्त भावनाओं, स्वाभाविक स्नेह सूत्रों और नीति का प्रसार अधिक आवश्यक है। हार्दिक एवं निश्चल प्रेम भाव, अकृत्रिम निस्वार्थ सहकारिता और आंतरिक दृढ़ता भारत में समाज रचना की आधारशिला है। हमारा दृष्टिकोण रूसों के इस दृष्टिकोण से भिन्न है कि मनुष्य जन्मतः स्वतंत्र होने पर भी हर जगह श्रृंखलाओं से बद्ध बंदी है। भारतीय दृष्टि मानव को भौतिक ऐसड़ाओं के अधीन और मनुष्य द्वारा रचित व्यवस्थाओं से जकड़ा हुआ नहीं मानती। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह तो हम सभी समझते हैं, किंतु जन्म से ही जो उत्तरदायित्व और कर्तव्य हमारे ऊपर आ पड़े हैं उनका समुचित निर्वाह करने के बाद ही सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। भारतीय समाज व्यवस्था के अंतर्गत यह कर्तव्य भार न तो एक पक्षी है और न ही अन्यायपूर्ण। उदाहरण संयुक्त परिवार प्रणाली को ही लीजिए। इस व्यवस्था के अंतर्गत यदि पुत्र के लिए मातृदेवो भय पितृदेवो भय है तो पिता के लिए भी पुत्रादिच्छेद पराजयम और प्राप्ति तु खोडसे वर्षे पुत्रे मित्रत्वे चरित है। यदि पत्नी के लिए उपदेश है कि वह पति को देवता समझे तो पति के लिए भी यह है कि वह स्त्री को देवी स्वरूप और सखा के समान माने। मनु ने लिखा है कि जहाँ नारियों की पूजा की जाती है उनका सम्मान किया जाता है वहाँ देवता रमण करते हैं, जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं की जाती वहाँ सब काम निष्फल होते हैं। और जिस कुल में पत्नी से पति प्रसन्न है और पति से पत्नी प्रसन्न है, दंपति एक दूसरे को संतुष्ट रखते हैं, निश्चय जानो कि उस कुल में कल्याण का सर्वदा निवास रहता है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में अंतर्निहित साम्य और स्वतंत्रता की धारणाएं हैं। हेडिंग है निष्कर्ष कंक्लूजन। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय समाज के कुछ अपनी दार्शनिक या परंपरागत विशेषताएं हैं और संसार में अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण उनका आदर है। इतना ही नहीं, इन्हीं विशेषताओं के कारण ही इस समाज ने विदेश के असंख्य प्रख्यात विद्वानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, जिन्होंने ही कि इसके विषय में गहन अध्ययन व विश्लेषण किया है और यह प्रमाणित किया है कि जो भारतीय संस्थाओं को कपोल कल्पित पौराणिक कथाओं, अंधविश्वासों, धार्मिक संकीर्णताओं, रूढ़ियों, अस्पृश्यता, अत्यधिक और आमंडरों का एक अद्भुत मिश्रण मानते या कहते हैं, वे न तो भारतीय आत्मा को जानते हैं और न ही भारतीय संस्कृति के यथार्थ स्वरूप को पहचानते हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने भारतीयों के दार्शनिक मन के विषय में उचित ही लिखा है कि वह मन उदार, सहिष्णु, नूतन भावों का जागरूकता से स्वागत करने वाला है। अनुशासन या अंकुश की वह उच्च आदर्श त्याग की भावना स्वागत कर्म प्रेरणा से अधिक द्रवित होता है। उस मन को दृढ़ता से लोकहित में बांधने के लिए, उसमें उदात्त भावनाओं से भरने के लिए और भारतीय समाज उसी धरातल के मूर्त रूप है। सब प्राणी मुझे अपना मित्र समझे और सब प्राणियों को मैं अपना मित्र समझूं, यह यजुर्वेद में एक ऋषि का वचन है। समस्त प्राणियों में एकात्म बोध या विश्व बंधुत्व के विचार को इतने स्पष्ट रूप में भारतीय समाज के प्रवर्तकों के लिए ही उच्चारण करना संभव है और जो कुछ उस यजुर्वेद काल के एक ऋषि ने कहा है था उसी को वर्तमान रूप में भी इस देश के महापुरुष अपने शब्दों में दोहराते हैं। उस देश के स्वामी विवेकानंद जी का वह उत्तात वाणी आज भी भारत ही नहीं संसार के समस्त युग में गूंज रही है। लुक अपॉन एवरी मैन ओ मैन एंड एवरी वन एज गॉड, यू कैन नॉट हेल्प एनी वन, यू कैन ओनली सर्व, सर्व द चिल्ड्रेन ऑफ लॉर्ड, सर्व द लॉर्ड हिमसेल्फ इफ यू हैव द प्रिविलेज, द ओनली गॉड टू वर्शिप इज द ह्यूमन सोल इन ह्यूमन बॉडी। ऑफकोर्स ऑल एनिमल आर टेम्पल टू, बट मैन इज द हाइएस्ट, द ताजमहल ऑफ टेम्पल्स। इफ आई कैन नॉट वर्शिप इन दैट, नो अदर टेम्पल विल बी ऑफ एनी एडवांटेज। भारतीय समाज के संबंध में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को इसे समझना है, इसे व्यवहारिक रूप देना है, यह आपका उत्तरदायित्व बनता है। इस प्रकार आपका भारतीय समाज के अध्ययन के परंपरागत पागम यही समाप्त होता है। धन्यवाद।